ओम शांति। तो ये जो शिव बाबा की सर्व संबंधों से अनुभूति की जो कड़ी चल रही है, उसके अंतर्गत आज जो संबंध है बाबा से, वो हमारा शिव बाबा हमारा प्रेरक है। कैसे हमको प्रेरणा देता है? हर मनुष्य के जीवन में बहुत सारे लोग प्रेरणा स्रोत होते हैं। बचपन से लेकर जब भी कोई एक दूसरे से मिलते हैं तो जरूर कोई ना कोई प्रेरणा लेते हैं। परिवार में माता पिता से प्रेरणा मिलती है, भाई बहनों से प्रेरणा मिलती है, बच्चा फिर थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल में जाता है तो जो उसके दोस्त होते हैं दोस्तों से प्रेरणा मिलती है, टीचर से प्रेरणा मिलती है, और वो प्रेरणा देख देख कर, चाहे वो किसी के बोल से मिलती है, किसी के कर्म से मिलती है, कोई लेक्चर दे रहा है उससे मिलती है, या किसी की हम जीवन कहानी पढ़ते हैं उससे मिलती है। तो ये सारा जीवन वास्तव में प्रेरणाओं पर आधारित ही है, प्रेरणाओं के उस स्तंभ पर ही टिका हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम एक दो को देखकर सीखते हैं, जैसे अभी जो बताया ऑलराउंड सेवादारी। तो यहाँ भी मधुबन में जो आते हैं मेहमान आते हैं शिविर करने के लिए, तो वो भी बहुत सारी प्रेरणाएं लेकर जाते हैं। लेक्चर याद रहे ना रहे, लेकिन उनको यहाँ की स्वच्छता बहुत अच्छी लगती है तो जाकर वे ही करेंगे, यहाँ से स्वच्छता की प्रेरणा लेगी, सफाई बहुत अच्छी थी वहाँ, तो उन्होंने देख के प्रेरणा ली। भंडारे में जाते हैं तो वहाँ देखते कैसे सेवा हो रही है, इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे चल रहा है, इतने मेहमानों को कैसे नियंत्रित किया जा रहा है, स्मूथली सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ये सब प्रेरणाओं के आधार पर एक दो से हम सीखते हैं। इसी तरह से हमारे जीवन काल में भी भगवान कैसे प्रेरक बनकर आया और उसकी प्रेरणा में इतनी शक्ति थी जो हमारे कड़े से कड़े संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए हमको सहज मार्ग बता दिया। तो भगवान की प्रेरणा के स्रोत भी बहुत हैं। वैसे तो बाबा कहते हैं कि प्रेरणा से कुछ होता नहीं है, मुरली में कहते हैं ऐसे, वो दूसरी प्रेरणा है, लेकिन ये पहली वाली प्रेरणा है। तो ये जो प्रेरणा बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन में आकर कार्य करके दिखाते हैं, कैसे पढ़ाई पढ़ानी है, कैसे वो भोग स्वीकार करते हैं, कैसे डिपार्टमेंट को कई बार दिशा निर्देश भी दिए जाते थे कि ये काम यहाँ हुआ नहीं है, इसको ऐसे करना है। तो बाबा जैसे प्रेरणाओं का सागर है, जैसे मुरली है तो मुरली का हर पॉइंट प्रेरणा है, और वो उन प्रेरणाओं को हम तभी कैच कर सकते हैं जब हमारा जो बुद्धि रूपी बर्तन है जो स्वच्छ होगा, जितना प्योर होगा। कई बार हम देखते हैं जैसे योग में बैठे होते हैं तो एकदम अचानक से बहुत अच्छी टचिंग आती है, तो वास्तव में वो उसकी प्रेरणा ही है। अगर हमारा उसके प्रति ध्यान है तो उसकी प्रेरणा भी यथार्थ रूप से टच होगी और हम उसकी अच्छी अनुभूति करके इस जीवन का आनंद ले सकते हैं, उस प्रेरणा को कैच कर सकते हैं। सेवाओं का विस्तार हुआ तो जगदीश भाई भी एक बार गए थे बर्मा विदेश सेवाओं के लिए, तो एक बार रंगून, बर्मा रंगून में ना, रंगून में, तो उनको भी जैसे प्रेरणा आ रही थी, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, तो वो बाबा की जैसे प्रेरणा आ रही थी, उससे टचिंग हो रही थी। इसी तरह से जो भी हम जीवन में करते हैं तो कहीं ना किसी न किसी रूप से हमें प्रेरणा मिलती है, लेकिन अगर हमारा उसके ऊपर थोड़ा अटेंशन है तो हम उस प्रेरणा के आधार पर हम अपने जीवन को प्रगति पथ पर ले जा सकते हैं। अगर अटेंशन नहीं है तो प्रेरणा भी कभी ना कहीं हमारे से वो मिस हो जाती है और वो हमें ही फिर हमारे दिल को जैसे दुखाती है बाद में कि हमको कर लेना चाहिए थे लेकिन हमने किया नहीं है। तो समय को भी देखते हुए उस प्रेरणा को अनुभव करना, कैच करना, उसके आधार पर अपने जीवन को चलाना, ये भी बाबा ने हम सबको सिखाया हुआ है। जैसे आज की मुरली में है कि पढ़ाई तुमको 20 नाखूनों का जोर देकर पढ़नी है। अगर उस पढ़ाई को अगर हम आज के दिन में, ये आज के लिए प्रेरणा, जैसे अगर आज के दिन में अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ लेंगे तो हो सकता है हमारे जीवन में प्रगति की जो रफ्तार है वो और तेज़ हो जाए। तो बाबा के हर जो पॉइंट हैं वो प्रेरणादायक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे जैसे आत्मा जैसे सोई हुई उसको जागृत करने के लिए है। जैसे बाबा कहते हैं मैं सदा जागती ज्योत हूँ, तुम आत्माओं की जो ज्योति उजा गई थी उसको मैं जगाने के लिए आया हूँ। तो बाबा वो ज्योति जगा रहा है, लेकिन उसकी प्रेरणा को हम समय पर कैच करें, उसको समय पर अप्लाई करें, समय पर उस पर थोड़ा नज़र दौड़ाएँ, उसका मनन चिंतन करें, तो वो हमारे लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। अदरवाइज प्रेरणाएँ आ रही हैं जा रही हैं, वो फिर प्रेरणा स्रोत हमारे जीवन में रहेगा नहीं। संसार में भी कितनी महान विभूतियाँ हुई हैं जिनके चरित्र है, उनके आधार पर ही अनेक मनुष्य अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाते हैं। उनके चरित्र पढ़ने से जैसे अंदर से किसी का खून खौल उठता है, किसी को कुछ कर गुजरने का एकदम जैसे संकल्प आता है और वो आगे बढ़ता है। तो सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत तो हमारे जीवन का बाबा ही है, जो हमको कदम कदम पर प्रेरणा देकर आगे बढ़ाने के लिए निरंतर हमारे पर छत्र छाया बनकर हमारे पर कृपा करता है, आशीर्वाद करता है, उसकी नज़र हमारे ऊपर प्यार बरसाता है। तो जो प्रेरणा की जैसे बरसात हो रही है ऊपर से, लेकिन उसको हम तभी अनुभव कर सकते हैं जब हम उसके प्रति थोड़ी पीठ करेंगे, उसका ध्यान देंगे। ओम शांति।
ओम शांति। जो बाबा से संबंधों की सीरीज चल रही है उसमें जो संबंध दिया है, बाबा मेरा ज्योतिषी है, एस्ट्रोलॉजी। हाँ, तो एस्ट्रोलॉजी जो वर्ड जो है, एस्ट्रॉन वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है, एस्ट्रॉन माना तारा समूह को एस्ट्रॉन कहते हैं ग्रीक में, और लॉजिया माना अध्ययन। तो जो तारा समूह का अध्ययन है उसको इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ये वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है और ये काफ़ी पुरानी साइंस है एक्चुअली। ये एक वैज्ञानिक तरीके से हर चीज़ इसमें सिद्ध करके प्रूव करके बताई जाती है, लेकिन आजकल इसमें अंधविश्वास ज़्यादा हो गया है। तो जिन लोगों के पास इसका नॉलेज था उन लोगों का वो नॉलेज केवल उन्हीं लोगों के पास रह गया, उन्होंने दूसरों को पूरा नॉलेज इसका दिया नहीं। और फिर जो है ये साइंस धीरे धीरे बदल के जो है अब अंधविश्वास में ज़्यादा परिवर्तित हो गई है। हाँ, पढ़ाते हैं कई जगह पे हैं इसका। अभी 2-3 महीने पहले एक अपने एक बीके भाई से मिलना हुआ था, वो इतना एक्सपर्ट है कि आप उसको केवल अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ या आपका फेस देखकर आपके रूम में आपका बेड कौन से डायरेक्शन में है वो बता देता था। वो आपके सेंटर से या घर से बाहर निकल रहे तो आपके राइट साइड में कौन सा पेड़ है और लेफ्ट साइड में कौन सा पेड़ है वो बता देता है। वो इतना एक्सपर्ट है भाई वो। क्योंकि मेरे सामने कुछ सेंटर की बहनें आई थी, उनका कुछ प्रॉब्लम था, तो उन्होंने बताया उसको कि ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है। तो उसने बताया आपके सेंटर में कुछ, उनको इविल सोल का प्रॉब्लम था, तो उसने कहा कि आपका जो सेंटर बना है वहाँ पे पहले एक पीपल का पेड़ था और उसमें किसी ने सुसाइड कर लिया था, तो वो आत्मा वहीं भटक रही है तो आपको तकलीफ देती है। तो आपके सेंटर से जब लेफ्ट साइड में निकलेंगे तो वहाँ पे भी एक लाइट 50-60 कदम पे लाइट का पोल है और उसके बाजू में पीपल का पेड़ है। तो बहन कह रही कि नहीं 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 है, उसके साइड में तो ये दुकान है। तो वो कह रहा है कि मैं लेफ्ट साइड में बोल रहा हूँ, आप राइट साइड की दुकान बता रहे हो, इतना तक बहन को बता रहा है वो। फिर उसने बोली मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसने कहा कि आपका जो किचन है किचन को लग के ही रूम है और वहाँ पे आपका मम्मी का बेड जो है पूर्व साइड में है, तो आप जो है उसको पश्चिम साइड में कर दो तो आप आधी तबीयत वहीं पर ठीक हो जाएगी। उसने कहा आपकी मम्मी की, इतना एक्सपर्ट हो भाई, यहाँ से बैठे बैठे बता रहा है। तो ये जो है एक पढ़ाई होती है, अभी जैसे कहा ना ये साइंस है, ये पढ़ाई है। तो जितना हम इसमें मास्टर करते जाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो उतना जो हमें इसका पूरा नॉलेज मिलते जाएगा। तो बाबा हमारा ज्योतिष शास्त्र कैसे हैं, तो वो जो ज्योतिषी होते हैं जो ये ग्रह जो है अलग अलग, उसका हमारे पृथ्वी के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, उसे जो नेचुरल कैलेमिटीज़ वगैरह आती है या जो भी प्रॉब्लम्स आती है और हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो जो है इन ग्रह नक्षत्रों की वजह से आती है। तो हर कार्य के लिए जैसे शुभ कार्य बताते हैं कि इस शुभ घड़ी में अगर आप वो कार्य शुरू करते हैं तो आपको उसमें पूरी सफलता मिलेगी, और आने वाली जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स के बारे में भी ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है। तो बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, तो बाबा ने जो सबसे शुभ वेला जो बताई है, सबसे शुभ घड़ी बताई है, वो है संगम युग कि स्वयं संगम। इस पर एक मुरली भी चली हुई है बाबा की, काफ़ी मुरलियाँ चली होंगी लेकिन एक मुरली में काफ़ी बाबा ने बताया संगम युग जो है सबसे शुभ वेला है जिसमें स्वयं परमात्मा आके हमें ज्ञान देते हैं। तो इस संगम युग में जिस भी आत्माओं का जन्म हुआ है, आत्माओं का मतलब हम जो ब्राह्मण बने हैं बाबा के बच्चे बने हैं, तो हमारे लिए सारा कल्प ही शुभ है। केवल सत्ययुग त्रेता नहीं लेकिन द्वापर कलयुग सारा समय ही शुभ है। तो इसमें जैसे शुभ कार्य के लिए भी बताते हैं और किस समय पे चालू करना है वो भी बताते हैं, आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताया जाता है। तो बाबा भी हमें आगाह करते हैं, बताते हैं कि ऐसे ऐसे विनाश होने वाला है, उसमें हमें इस तरह से रेडी रहना है। बाबा जैसे बताते हैं अगर आप पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो माया थप्पड़ मार देगी, तो ये भी हमें बाबा जो है परेशानी या मुसीबत जो आने वाली है उसके बारे में हमें बाबा बताते हैं। तो जैसे वो ज्योतिष शास्त्र में जो ज्योतिषी होते हैं, जैसे हमारा भी फैमिली पंडित जो था, तो जब मेरा जन्म हुआ था उसमें जो हमारी कुंडली बनाते हैं घर में, तो उसने पहले ही बता दिया था कि ये लड़का जो है पिछले जन्म में सन्यासी था और इस जन्म में भी बड़ा होने के बाद सन्यासी बन जाएगा, घर बार छोड़ देगा। काफ़ी एक्सपर्ट था वो भी, 90% 95% जो भी बताता था वो सही ही बताता था ऐसे। तो हम भी बाबा की जो भी डायरेक्शन बाबा में मुरलियों में देता है, तो हम इस मुरली को जो है ज्योतिष शास्त्र के रूप में जो भविष्यवाणियाँ भी के रूप में भी ले सकते हैं, और जो आने अभी जो करंट समय चल रहा है उसमें क्या करना है, पास्ट में क्या हो गया है, जैसे वो ज्योतिषी होते हैं ना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों बताते हैं, तो बाबा भी जो हमें यहाँ पे हमारा पास्ट क्या था, फ्यूचर प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या बनने वाला है, वो तीनों बारे में हमें बाबा बताते हैं। तो जितना हम बाबा के डायरेक्शन को या कहे कि बाबा की मुरलियों का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करेंगे, तो हमें हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में, हर प्रॉब्लम्स का जवाब जो है उन मुरलियों के द्वारा हमें अपने आप ही मिलता जाएगा। तो बाबा एक ज्योतिषी के रूप में हमें जो है हमेशा गाइड करते रहता है, लेकिन उस डायरेक्शन को किस रूप में लेना है, हम कितना उस बात को समझ रहे हैं। जैसे बाबा कहता है ना कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे जो यथार्थ रूप से जानकर याद करते हैं, कितना आप याद करते हैं, तो बाबा भी जो हमें डायरेक्शन देता है मुरलियों के द्वारा, उस डायरेक्शन को हम कितना कैच कर पा रहे हैं, हमारी बुद्धि कितनी है उस डायरेक्शन को कैच करने के लिए, उसके हिसाब से हम हमारी लाइफ बना सकते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा पारसनाथ है और हम उसके बच्चे पारसनाथ है। मास्टर पारसनाथ। तो पारस के संग में आने से क्या हो जाता है, लोहा भी सोना बन जाते हैं। तो हमारा जीवन कैसा था, लोहे समान था, और अभी कैसा बन गया, गोल्डन। गोल्डन से भी ऊपर कौन सा होता है, डायमंड बन गया। तो वहाँ तो पारस मणि का गायन है कि वो लोहे को पारस बनाता है, लेकिन यहाँ तो उससे भी ऊपर हो गए कि हम डायमंड बन जाते हैं। तो कितना हम सभी का सौभाग्य है कि हम कहाँ कौन सी दुनिया में थे। कलयुग को लोहे तुल्य कहा जाता है और संगम युग को डायमंड तुल्य कहा जाता है। तो हमारा जीवन कितना ऊंचा बन गया, तो इसी खुशी में रहना चाहिए। और हमारा जो ये संगठन है वो भी एक कैसा, सभी को कैसा प्रेरणा देता है, फरिश्ता बनने का प्रेरणा देता है, और पारसमणि तो बनेंगे ही बनेंगे। दूसरा जो कहते हैं कि जब श्री राम वहाँ गए थे वनवास में, तो एक पत्थर था उसको टच हो गया तो क्या बन गया, अहल्या वो श्राप मुक्त हो गए। तो हम भी श्राप मुक्त हो गए हैं। बाबा हम बच्चों को कितना ऊंचा बनाते हैं, तो इसी खुशी में रहना है। दूसरा पारसनाथ का जो गायन है बहुत ऊंचा है। तो हमारी जो पढ़ाई है वो भी कौन पढ़ाता है, पारसनाथ पढ़ाता है। और हम क्या बनते हैं, देवी देवता बनते हैं, गोल्डन तुल्य बनते हैं। तो जब हम आज बाबा ने कहा पढ़ाई छोड़ देते हैं या तो पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, तो फिर वो पास नहीं होंगे, पास नहीं होंगे तो कहाँ जाएंगे, सतयुग में नहीं जाएंगे, त्रेता युग में भी जाएंगे तो जाए तो अच्छा है, लेकिन वहाँ भी नहीं जा सकते। तो संग का रंग लगता है। कहते हैं कि दो व्यक्ति साथ में होते हैं उसका कलर नहीं आता है, लेकिन उसका जरूर उसमें उसका रंग तो जरूर लगता है। माना कहते हैं ना एक उसको, हाँ उसको बैलों के बारे में बताते हैं कि दो बैल होते हैं, उसका दोनों का अलग अलग कलर है, लेकिन उसका कहते हैं वान नहीं आता है लेकिन शान आता है, माना उसका इफेक्ट आ जाता है। तो हमारे जीवन में भी बाबा ने हमारे जीवन को परिवर्तन कर दिया, कहाँ भटकते थे और आज कितनी अच्छी राह मिल गई है। जो हम भी पारसनाथ बन के अनेकों को प्रेरणा देने के लिए निमित्त बन जाए, तो ये हमारा जीवन कितना अमूल्य है उसको हमें देखना है कि उस अमूल्य जीवन का मूल्य इस संगम युग में है, दूसरा योग कोई युग में इसका मूल्य नहीं है। तो इस अमूल्य जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए पारसनाथ के संग में रहना है। अगर थोड़ा भी हम दूर जाते हैं तो फिर कौन सा रंग लग जाता है? माया का रंग लग जाता है। आज बाबा ने बोला कि कोई भी माया का रंग नहीं लगना चाहिए, लेकिन माया का रंग तब लग जाता है जब थोड़ा भी उस संग से दूर होते हैं। तो हमें सदा ही उस संग में रहना है, तो उस संग में रहने से संग का रंग लग जाएगा। ओम शांति।
ओम शांति। जो सर्वसंबंध की श्रृंखला है उसमें बाबा के रूप में बाबा है ना, बाबा के रूप में टॉपिक मिला है, उसके बारे में थोड़ा चिंतन किया है, वो सामने रखता हूँ। बाबा जैसे बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे तो ज्योमेट्री में एक दो बिंदु के दूरत्व बताते थे, जो निकटतम दूरत्व है ना दो बिंदु के अंदर, उसको स्ट्रेट लाइन सरल रेखा बोलते थे। हाँ, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन। यहाँ भी जितने भी संबंध है देखा जाए तो 108 संबंध से हम गुजर रहे हैं, तो उसमें भी देखा जाए तो जितने निकटतम संबंध है वो बाबा और बच्चे, बाप और बच्चे के संबंध है। एक माता को हमने पूछा है आपको कौन से संबंध अच्छा लगता है, उन्होंने बोला हमें तो साजन की संबंध। तो मैंने बोला साजन तो बड़े होने के बाद होता है ना, बचपन से क्या संबंध है? तो कुछ बोला नहीं, बोला हमें तो साजन ठीक है। तो देखा जाए तो वो तो किसी का कोई संबंध अच्छा लगता है वो ठीक है, लेकिन जो सर्व संबंध है बचपन से लेकर अंत तक बाबा साथ होता है, साजन तो बड़े होने के बाद होता है। एक संस्कृत में जो बाबा मुरली में बार बार बोलते हैं ना, तमेव माताश्च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तो तुम ही हो माता पिता बंधु सखा, ये भी बोलते हैं। उसके अंदर पिता का जो संबंध है उसमें सब संबंध भी आ जाता है। बचपन में कोई बच्चे नटखट होता है, नहीं पढ़ते हैं, तो बाप उसको ध्यान देते हैं कैसे बच्चे लायक बने। माँ तो जन्म देने के बाद उसका काम पूरा नहीं होता है, लेकिन बाप ज़्यादा उसको ध्यान रखते हैं, सवेरे उठाना पढ़ना। अगर बच्चा लायक नहीं होता है तो उसको मार धर पीट बा शासन भी करते हैं, लेकिन ये बाप हमारा ऐसा अच्छा बाबा है, कभी ऐसा पिटाई तो नहीं करते हैं, लेकिन बहुत समझा समझा के बच्चे को कैसे लायक बनाते हैं। वो भविष्य का लक्ष्य देते हैं, तुम ऐसा देवी देवता थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, तो ऐसा करके बाबा हमें ऊंचा बनाते हैं। यहाँ भी देखता हूँ सवेरे उठते ही बाबा से बोलते तुम गुड मॉर्निंग करो नहीं करो हमें तो करता हूँ, तो बाप कितना लाठ प्यार से हमको उठाते हैं, नहीं भी उठता हूँ ना खटिया हिलाते हैं। अच्छा उसके बाद बोले उठो बैठो योग में बैठो इनकम करो, फिर मीठे बच्चे बोलकर पढ़ाई पढ़ाते हैं, और वो बाबा इतना निर्माण है लास्ट में बच्चों को भी नमस्ते करते हैं। सारा दिन कार्य में व्यवहार में आप कहीं भी जाओ बोलते बाबा को साथ रखना नहीं छोड़ना। जैसे छोटे बच्चे बाबा का हाथ पकड़ के कहीं चलता है तो उसका कोई परवाह नहीं होता है, कहाँ गिरना है कहाँ चलना है वो बाप ही है। तो हमारा बाप ऐसा है, वो हमारे हाथ पकड़ के चलते रहता है, कहीं समस्या आ जाए तो समस्या समाधान के लिए बहुत सारी युक्तियाँ बताते हैं इस समस्या में ऐसा करने का। तो बाबा, देखा जाए तो बाबा यहाँ हमें चार प्रकार की रास्ता बताते हैं। जैसा जनक बोलते हैं तो जन्म देने वाला होता है, माने आपको मुक्ति जीवन का, जैसा हम ज्ञान में आए तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का राह मिल गया। और ब्राह्मण जन्म श्रेष्ठ जन्म है सारे कल्प के अंदर, वो भी हमें ज्ञान मिल गया। जब पिता है तो सारे पैतृक संपत्ति जितना जायदाद है उसका मालिक बना देते हैं, छोड़ता नहीं। और जब बाबा बोलते हैं, वो क्या करता है, बाह बच्चे बाह 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 देकर बच्चे को कंधे पर बिठाए बोलते हैं, तुम भी बाप से बड़े हो, तुमको और क्या चाहिए, माँ तो गोद तक लेता है यहाँ तक, बाप कंधे पर बिठा के बोलते तुम बाप से बड़े हो, तुम तो डबल पूजा के अधिकारी हो, बाप का तो सिंगल पूजा होता है, बच्चों का तो डबल पूजा होता है, तुम तीन तख्त के अधिकारी हो, अपना दिल तख्त में तो बैठते हो, बाबा को अपना बना लेते हो तो बाप के दिल तख्त पर बैठते हो, अब भविष्य में तुमको राजसिंहासन मिलता है, मैं तो उधर जाता ही नहीं। तो ऐसा करके बच्चों को ऊंचा उठाते हैं। लौकिक में देखा जाए तो बच्चे कुछ नटखट होता है, कुछ उल्टा कार्य करता है तो बाप गालियां देते हैं, मर जाए तो अच्छा है, बाबा भी मुरली में बोलते हैं आप में मर गए। तो यहाँ बाबा ऐसा कभी नहीं बोलते हैं, वो तो बच्चों को सम्मान देकर, बहुत लाठ प्यार देकर ऊंचा उठाते हैं। और अपने को छुड़ाने के लिए बोलते हैं धर्मराज से सावधान रहना है। हाँ, तो यहाँ देखिए एक संस्कृत में श्लोक है, पिता स्वर्ग पिता, बाबा के लिए बोलते हैं, पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परवंतप पितरी प्रतिमापन्न प्रियंते सर्वदेवता। पिता स्वर्ग इसका अर्थ है लौकिक पिता तो है, हर घर में ये स्लोगन हम छोटे बचपन में जब थे ना, कारपेट में ये में टंगा हुआ रहता था, तो उसको उस टाइम इसका अर्थ मालूम नहीं हुआ था, लेकिन जब ज्ञान में आए तब पता चला पिता स्वर्ग क्या चीज़ है। इस पिता के आश्रम में आ जाओ एकदम शांति, यहाँ भी मधुबन में पांडव भवन में घुस जाओ, ये बाप का घर सो आपका बच्चों का घर है। तो अपने घर में पहुँच जाए तो कैसे लगता है, एकदम सुकून लगता है। तो यहाँ भी हम जब बाबा के घर में पहुँच जाए तो कोई परवाह नहीं है, खाओ पियो मौज करो, मुरली सुनो, ध्यान करो, सेवा करो, जो मिलना है वो तो बाबा गारंटी करके रखा है। पिता धर्म पिता स्वर्ग माने बाबा का घर माने स्वर्ग से भी बेहतर है। स्वर्ग का सुख क्या है अभी तो हमारा कल्पना की है, बाबा जो मुड़ लेते हैं वो बोलते हैं उसके आधार पर हम थोड़ा बहुत इमेज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ जो यहाँ भी इतना भी अभी गेस्ट आए ना डॉक्टर्स, वो आके अरे इतना शांति, उनका दुनिया तो कैसे, वो पेशेंट और ये चिल्लाना और चिल्लर लेना, और यहाँ यहाँ तो देख रहे थे ये तो कुछ भी नहीं, ये तो उससे ऊपर हम। तो बाबा का घर माने आलय, एकदम शांति। पिता स्वर्ग पिता धर्म, पिता का जो आचरण है ना वो अपना लेते हैं, वो है सबसे बड़ा धर्म, इससे बड़ा धर्म कोई है नहीं। ये बाबा जो जो कर्म किया है उसको कर्म को अनुसार हम चले, ये हमारा सबसे बड़ा धर्म, इससे बड़ा धर्म कोई है नहीं। पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परमंतप, इस पिता को याद करना सबसे बड़ा तपस्या है। बाबा भी कहते हैं कि रात रात जाकर भी तुम तपस्या करो, कमाई करो, तपो, अपने अंदर जो भी कमियां कमजोरी है सब दग्ध कर दो, इससे बड़ा तपस्या दुनिया में कोई है नहीं। लौकिक में तो समझते नहीं थे, तपस्या किसको कहते हैं, वो बाबा को अपने लौकिक बाबा को शरण करने से क्या तपस्या होता है। लेकिन ये बाबा क्या करते हैं, उनका जीवन चरित्र देखो, कैसे उन्होंने यहाँ बैठ के तपस्या किया अपना। तो बाप सर्वदा बच्चों के लिए सोचते रहते हैं, ये हमने भी सुना है, देखा तो नहीं। ब्रह्मा बाबा जब थे उनके लिए जब थोड़ा अच्छा मकान बनाया था तो सभी ने कहा बाबा इस घर में आप रहो, बाबा ने बोला कि नहीं बच्चों के लिए घर है, बाबा तो जो घर में रहते हैं वही ठीक है। तो ये बाबा भी क्या करते हैं, भले तुम्हारे लिए मैं स्वर्ग रास्ता हूँ, मैं उतर जाता नहीं, ये बच्चे के लिए है। तो यहाँ भी ऐसा भी है, प्रत्यक्ष देखने को जो मिला है वो भविष्य में ही होगा। पितोरी प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता, जितना भी 33 करोड़ देवी देवता बोलते हैं सबके ऊपर वो उसको वो रचने वाला है। इन सभी देवता, हम तो भटक रहे थे ये सब देवी देवता के पीछे, इधर उधर, इधर भोग ले जाओ, इधर प्रसाद ले जाओ, इधर फूल चढ़ा, बहुत कुछ करते थे। उन्होंने क्या बोला, 33 करोड़ देवी देवता के संतुष्ट करने के बाद जो भी नहीं मिलता है वो एक को करो, उससे अधिक मिल जाए, मिल जाता है। तो हम भी यहाँ ज्ञान मार्ग में देखता हूँ, ये बाप हमने बोला था जनक और पिता, बाबा लास्ट में एक है रचयिता। तो हमें रचना करके सृष्टि का आदि मध्य अंत का रचना का जो इतिहास, ड्रामा का जो इतिहास उन्होंने सम्मुख ऐसा स्पष्ट किया है, ये ज्ञान कभी हमारे सामने नहीं था, हमारा लक्ष्य नहीं था जो हम क्या बनने वाले हैं। भक्ति करते थे कुछ भी पता नहीं था, क्यों करते हैं वो भी पता नहीं, मात पिता करते हैं, इधर उधर बड़े करते हैं, चलो फूल ले चलो, प्रसाद ले चलो, जल ले चलो, प्रणाम करो, तो उसमें फल क्या होगा, बोलते हैं आशीर्वाद मिलेगा। अरे आशीर्वाद क्या है, यहाँ तो बाबा बोलते आशीर्वाद आज कुछ भी नहीं, तुम जो पढ़ाई पढ़ो, जैसा लायक बनो वही तुम्हारे लिए कृपा है, वही तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। तो इतना स्पष्ट ज्ञान कहीं भी नहीं था, सृष्टि चक्र ज्ञान, ये जो 5000 साल हम मनुष्य थे, फिर हम है अभी ज्ञान लिया फिर देवता बनेंगे, ये ज्ञान किसी के पास नहीं था। तो बाबा ने ये जो सारे सब सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत का रचयिता बन के सब ज्ञात कराया, तो उससे हमारा मैंने नॉलेज बुद्धि का रोशनी खोल गया। अभी आप देखिए हम तो एकदम एक पॉइंट है अनाथ बन गए थे, कोई हमें पूछते थे क्रिश्चियन का फादर कौन है, जैसे स्क्राइट बोल देते थे, सिख धर्म का फादर कौन है, गुरु नानक बोल देते थे, बौद्ध धर्म का वो बुद्ध देव बोलते थे, बोलते तुम्हारा धर्म कौन सी है, बोलते थे हाँ तो हिंदू धर्म है, बोले तुम्हारा जनक कौन है, तुम्हारा फादर कौन है, तुम्हारा रचयिता कौन है, तो सिर नीचा हो जाता था, तो अपना पिता का भी परिचय नहीं दे पाते थे। अभी ये बाप ऐसा है, सामने प्रकट हो गए, मैं तुम्हारा बाप हूँ, शास्त्र में गायन है ना, शंभु शंभु शिव शंभु भोलानाथ, मैं स्वयं प्रकट होके तुमको कहता हूँ मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम हमारा रचना है, अभी तुमको सृष्टि का आदि मध्य अंत का नॉलेज दे रहा हूँ, इस नॉलेज से तुम फिर मनुष्य से देवता बनेंगे, तुम न बंदर थे न दूसरा जानवर थे, मनुष्य से देवता बनेंगे। भक्ति में कहा बात एक है, इस जन्म के बाद फिर 84 लाख योनियां भ्रमण करने के बाद फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। अरे 84 जन्म कहाँ भटकेंगे, बाबा तो बोलते हैं आप तो तुम मनुष्य ईश्वरी छोड़ के फिर देवता बनेंगे, तो कितना श्रेष्ठ जीवन है, जो जिसको तुम पूछते थे वही बनेंगे। तो ये हमारा बाबा ऐसा हमको अनाथ से सनात बना के, लायक बना के, देवी देवता पोस्ट दे के ऊँचा उठा रहे। ओम शांति।